नमस्कार आदाब साथियों, मोबाइल वाणी आपके लिए लेकर आया है गुरु मंत्र कार्यक्रम, जिसमें हम सुनेंगे विभिन्न शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया अलग अलग विषयों पर पढ़ाई के लिए दिशा निर्देश। तो आइए सुनते हैं आज की टिप।
नमस्कार बच्चों, प्लस टू हाई स्कूल नगर नौसा के राजनीति विज्ञान के शिक्षक मैं पंकज कुमार सिंह आपसे फिर एक बार मुखातिब हूँ। इससे पहले के चार अध्याय हम कर चुके हैं, आज पांचवें अध्याय में एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिसमें इलेक्शन और उसके प्रतिनिधित्व पर चर्चा होगी। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है और उसके बिना क्या लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहना न होगा कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ चुनाव की कोई न कोई पद्धति होती है। पहले के जमाने में हाथ उठाकर चुनाव किया जाता था, जबकि अब वैसा संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण सभी जगह चुनाव की किसी न किसी पद्धति को अपनाया गया है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई। अंत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की कल्पना की गई, जो कि साकार भी। निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्यीय था, जो बाद के दिनों में तीन सदस्यीय हुआ। जब तक कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकारें रही, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भारत में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं डाला गया और न ही इसकी ज़रूरत पड़ी। लेकिन जिस दौर में बहुमत की सरकारों का अंत हो गया और गठबंधन सरकारों का दौर चला, तो इसकी महती भूमिका होने लगी। राजीव गांधी के समय में टीएन सेशन को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और उसके बाद भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली ही नहीं बल्कि सबसे ईमानदार स्वच्छ प्रशासन वाला चुनाव आयोग बन गया। जब भारत में बूथ लूट की घटनाएं सामान्य थी, उस दौर में इसको एक बारगी में खत्म करने का वीरा उठाया टीएन सेशन ने और पूरे भारत से एक फेयर इलेक्शन का ऐसा झंडा गाड़ा गया जिसे आज तक लोग भूल नहीं पा रहे हैं। अब भी चुनाव निष्पक्ष होते हैं, पर जैसी गरिमा टीएन सेशन ने चुनाव आयोग को प्रदान की, वैसे आज के काल में मैसर नहीं। कहना न होगा कि बाद के समय में जो चुनाव आयुक्त बने, उन्होंने उस लंबी लकीर का पीछा करना भी मुनासिब नहीं समझा जो उन्होंने खींच लिया था। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में जो संसद के सदनों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, उसमें जो निचला सदन है जिसे लोकसभा कहते हैं, जिसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, उसकी महती भूमिका है। पहले इसमें कुल 79 और 41 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित थी, जिसे अब 2008 में बढ़ाकर 84 और 2008 के डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा में प्रतिनिधित्व की संख्या एससी एसटी के लिए क्रमशः 84 और 87 कर दी गई है। इस प्रकार अब 131 सीटें आरक्षित हैं। 543 सीटों में से इतने सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है जहां के मतदाता तो सभी होते हैं, पर प्रतिनिधि वहां वही खड़े होते हैं जो उस समुदाय से होते हैं। कुछ सीटों पर एससी खड़े होते हैं और कुछ सीटों पर एसटी खड़े होते हैं, पर भारत का सामान्य नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। इस प्रकार भारत में प्रतिनिधित्व की यह एक विरल पद्धति ली गई है, जो कि अन्य देशों में कहीं नहीं पाई जाती है। भारत में जो सामाजिक खाई थी, उसको पाटने के दिशा में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा सुझाए गए इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रकार भारतीय चुनाव पद्धति में प्रतिनिधित्व की यह परंपरा कायम है। और इसके साथ ही भारत उन देशों में है जहां की लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में उसके प्रतिनिधि उसकी रक्षा करते हैं। चुनाव सुधार समय समय पर होते रहे और इनके बल पर लोकसभा की गरिमा भी बढ़ती गई, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों के नहीं बैठने या समय पर नहीं रहने के कारण बहस में जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए वो नहीं रही और इस प्रकार लोक सदन की महत्ता धीरे धीरे कम भी हुई है। आरक्षित सीटों पर जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, कभी कभी वे अपनी भूमिका भी सही से निर्वहन नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं। कहना होगा न होगा कि भारतीय जनप्रतिनिधि ब्रिटिश परंपरा के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं और इसी के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र की रक्षा करना भी एक कठिन चुनौती बना हुआ है। आज के अध्याय में हम इतना ही, इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और आगे के अध्याय में आप सबसे फिर से मुखातिब होंगे। नमस्कार।
दोस्तों, अगर शिक्षा और परीक्षा की तैयारी से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हम तक पहुंचाइए। नंबर 3 दबाकर हम आपके सवालों के जवाब विशेषज्ञों से प्राप्त कर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।